मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। उन सब ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वहां नक्श खड़ा हुआ था। उसे इशिका के एक्सीडेंट का पता चला तो वो इंडिया आ गया था। नक्श को फिर से अपने सामने देखकर अभिमन्यु अपना आपा खोने लगा। वो उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इशिका से दूर रहोगे। अगर फिर भी तुम उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। नक्श ने अभिमन्यु के हाथ अपनी कॉलर से हटाए और शांत लहजे में कहा, आप परेशान हैं चाचू, और मैं आपके गुस्से का कारण भी समझ सकता हूं। पिछली बार जब इशिका के मरने की खबर आई थी तब मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। यकीन मानिए, मैं उसका बुरा नहीं चाहता हूं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम उसके आसपास भी नहीं भटकोगे, अभिमन्यु ने सख्त शब्दों में कहा। अगर यकीन नहीं है तो भी आपको इशिका के लिए मुझ पर यकीन करना होगा। मैं लाख बुरा हूं लेकिन उसका बुरा नहीं चाहता। आज भी मैं उससे प्यार, नक्श बोल रहा था लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अभिमन्यु उसे बुरी तरह घूर कर देख रहा था। हर बार की तरह अभिमन्यु के इस तरह गुस्से में देखने पर नक्श के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थीं। अभिमन्यु नक्श की सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में केशव और राधिका ही थे जो उसे समझा सकते थे। नक्श ने उसे वहीं पर छोड़ा और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, आप समझाइए चाचू को, ये इशिका को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहे हैं। इन्हें अपने गुस्से और ऑब्सेशन में ये तक नहीं दिख रहा कि मैं यहां इशिका का भला चाहता हूं। तुम कितनी भी सफाई क्यों ना दे दो नक्श, लेकिन हमें तुम पर यकीन नहीं है। मैं अभिमन्यु से सहमत हूं, तुम इशिका से दूर रहोगे, राधिका ने सख्त आवाज में कहा। नक्श ने गहरी सांस ली और केशव की तरफ देखा। उसने उनकी बातें सुन ली थीं। सिर्फ केशव ही इस बात के पक्ष में था कि नक्श को इशिका से मिलने दिया जाए। इस बीच जब इशिका कमरे के अंदर थी तो नक्श की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो उठकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी तभी नर्स ने उसे पकड़ लिया था। मैम प्लीज, आपके पैर में हल्का फ्रैक्चर आया है, आप उठ नहीं सकती हैं, नर्स ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर आप नक्श को अंदर भेज दीजिए। अगर मिसेस सिंघानिया अभी भी बाहर हैं तो उन्हें बोल देना कि उन्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इशिका ने जल्दी से कहा। जब उसने देखा कि नर्स बाहर जाने की बजाय अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी तो इशिका अंदर से ही तेज आवाज में चिल्लाने लगी, नक्श, नक्श, ये तुम हो ना, प्लीज अंदर आओ। इशिका बिल्कुल पहले की तरह नक्श को बुला रही थी। बीते दो सालों में वो उसकी ये आवाज सुनने को तरस गया था। अगर उर्वशी ने उसे आयशा से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो वो अपने प्यार के साथ होता। आयशा की बातों में आकर नक्श ने इशिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उसके बाद इशिका उससे नफरत करने लगी थी। आज इशिका को फिर से इस तरह नक्श को बुलाते देखकर नक्श के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, नक्श ने जल्दी से कहा और उनके रोकने के बावजूद दौड़कर अंदर जाने लगा। हालांकि अभिमन्यु और राधिका ने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन तब तक नक्श अंदर चला गया था। नक्श को अपने सामने देखकर इशिका के चेहरे पर राहत के भाव थे। अब तक उसे उन लोगों के बीच काफी अनजाना सा महसूस हो रहा था। अभिमन्यु और राधिका नक्श के पीछे ही थे। नक्श के लिए इशिका के चेहरे पर इतना अपनापन का भाव देखकर उन दोनों ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली थीं। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और एक बार फिर नक्श इशिका की जिंदगी में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ रात के लगभग 9 बजे के करीब अभिमान ऑफिस से घर पहुंचा था। घर पर पहुंचकर वो हैरान रह गया जब उसने देखा सिंघानिया फैमिली डिनर के लिए उसके घर पर आई हुई थी। डाइनिंग टेबल पर आकाश के साथ निशा भी मौजूद थी। स्काई उस दिन के बाद रात से गायब हो गया था तो अभिमान उसे लेकर बेपरवाह हो चुका था। उसे यही लगा था कि एक बार फिर वो उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन फिर से निशा के साथ उसे देखकर वो समझ गया था कि उसके पीछे से स्काई अभिमान से मिल चुका था। अभिमान को वहां देखकर सिद्धांत जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, ये लो अभिमान भी आ गया, अच्छा हुआ चाची आपने इसे पहले ही कॉल कर दिया था, वरना ये तो हमेशा की तरह आधी रात को घर आता। वैसे इतनी रात तक ऑफिस में काम ही करते हो या कुछ और चक्कर है? आशुतोष के दिल में शक गहरा करने के लिए सिद्धांत ने जानबूझकर आखिरी कुछ लाइन कही थी। अभिमान उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। सिद्धांत उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, ताकि सिर्फ उसे ही सुनाई दे, मुझे इस तरह घूरने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम चारों तरफ से फंस चुके हो, निशा चाची भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, ऊपर से अब तो तुम्हारे डैड भी आ गए, बेहतर होगा कि अपना ये झूठा गुस्सा छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर दो। अभिमान को समझ नहीं आता था कि आखिर सिद्धांत उसके और आशी के साथ रहने के पक्ष में क्यों था, जबकि इसमें उनका नुकसान ही था। अगर आशी अभिमान की जिंदगी में आ जाती
तो वो कभी भी अभिमान से उसका हक छीन नहीं सकते थे। मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर डिनर कर लिया था, अभिमान ने जवाब दिया और ऊपर जाने लगा। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही होंगे कि पीछे से आशुतोष ने तेज आवाज में कहा, अगर डिनर कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, फ्रेश होने के बाद हमें ज्वाइन कर लेना, हम शादी की डेट निकाल रहे हैं। अभिमान का चेहरा दूसरी तरफ था, उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसने बिना उनकी तरफ पलटे तेज आवाज में कहा, लीगली मेरी शादी हो चुकी है, अगर किसी चीज की तैयारी करनी है तो हमारी डिवोर्स की कीजिए। अभिमान की बात सुनकर वो सब सन्न रह गए थे और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। निशा के सामने पहली बार ये आया था कि वो आशी से तलाक लेना चाहता है। निशा जल्दी से खड़ी हुई और अभिमान के पास जाकर बोली, पागल हो गए हो तुम, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम आशिका से प्यार करते हो, उल्टा तुम्हें मिस्टर सिंघानिया को थैंक्स कहना चाहिए कि वो पुरानी बातों को भूलकर तुम दोनों की शादी अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं। लेकिन अब मेरा मन नहीं है, अभिमान बोला, जिसे सुनकर स्काई के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। अभिमान चाहे लाख मन करे, लेकिन उसकी जिद और आदतें स्काई से मिलती थीं। अगर तृप्ति ने आशी और अभिमान की शादी करवाने का वादा नहीं लिया होता तो शायद ही आकाश इन सब में इंटरेस्ट लेता। आशुतोष ने आकाश की तरफ देखा था कि वो अभिमान को इस मामले में समझाए। अभिमान किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आकाश अच्छे से जानता था कि उसे अभिमान को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, मत करो शादी, तुम्हें आशी से तलाक लेना है तो ले सकते हो, पर एक तलाक के पेपर्स मैंने भी बनवा रखे हैं तुम्हारी माँ के साथ। डिवोर्स होने के बाद मैं तुम्हें अपनी सभी प्रॉपर्टी और रिश्तों से बेदखल करने वाला हूँ, क्या तुम सब खोने के लिए तैयार हो? आकाश ने पीछे से तेज आवाज में कहा, तो अभिमान के कदम वहीं रुक गए थे। भले ही उसे आकाश के हिस्से के शेयर्स मिले हों, लेकिन एआर एम्पायर्स को इस मुकाम तक लाने में अभिमान ने दिन रात एक कर दिए थे। अभी वो इस लायक बना था कि वो राजवंश फैमिली से बदला ले सके। अगर उसे सब छिन जाता तो वो कभी अपनी माँ और खुद के साथ हुए अन्याय का बदला नहीं ले पाता। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि उसे उम्र भर के लिए आशी को अपनी पत्नी के तौर पर रखना पड़ता। अभिमान कश्मकश में खोया हुआ था और फैसला नहीं कर पा रहा था। उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो रुक कर कुछ बोले, उसे उसी पल में फैसला लेना था।